ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नास्तवयेष्वदेशो नित्यं भगवते सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं निगमकल्पतरोर्गलितं परं सुखमुगदमृतदिव्य संवदं विविधभक्तं रासमालयं मुहुरो राशिकभुवि भावुकः। हरे कृष्णा। हम श्रीमद्भागवतम से पढ़ रहा है पांचवा अध्याय, पांचवा स्कंध, द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या 12। लोकम प्रदर्शयां सुरित्तमं तावकं मे यत्रत्यां इत्थं पुरसां अवायावौ अपूर्वौ अस्मत् विधास्यां मनां उनयानौ विभार्ते बहो अर्बुतं सरसं रासं शुद्ध आदि वक्त्रे लोकं प्रदर्शय सुरित्तमतावकं मे। यत् अत्र इदं उरसावयवावव पूर्वौ अस्मद्विदस्य मनुनायनो विभर्ति भाव अद्भुतं सरसरसा सुधाधिवक्त्रे लोकं प्रदर्शय सुरित्तमतावकं मे। यत् अत्र इदं उरसावयवाव पूर्वौ अस्मद्विदस्य मन उन्नायनो विभार्ति भव अद्भुतं सरसरससुधादिवक्त्रे। लोकं प्रदर्शय सुरित्तमतावकं मे। यत् अत्र इदं उरसावयवाव पूर्वौ अस्मद्विधस्य मन उनयनो विभर्ति भव अद्भुतं सरसरससुधादिवक्त्रे। बोलिए। कोई है जो बोल सकता है? लोकं प्रदर्शय सुरित्तमतावकं मे। यत्र इत्थं रसावयवाव पूर्वौ। बोलिए। asmadvidhasya manonayano vibhati. Bhadvad Bhutam Sarasarasa Sudhadi Vaktre. Ha, bolye. Lokam Pradarshaya Suritam Atavakam Me. Ek bar, abhi dusre line. Yatatya itam rasavaya vavu parvo. Vibhati. Asmad vidasya manuyana yo vibhati. Vaktre Bhavad Buddham Sarasara Sasudati Vaktre. ठीक है, बैठिए. कोई और है जो अच्छे तरह से बोल सकता है, उच्चारण कर सकता है? प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया. ठीक है. लोकम बदाशय सुरितम तावकम मे. It atriya itam murasava yavava purvau. Asmad vidasya manonaya no vibhartin. Bhavad bhutam sarasara sasudati vaktre. Mataji, koi mataji or hai? Koi hai? ठीक है. लोकम आवास स्थान देश प्रदर्शया दिखा दो सुरितमं. हे शेष, हे श्रेष्ठ मित्र मित्रवर, तावकम इस प्रकार मैं मुझको यात्रात्या जिसमें उत्पन्न पुरुष इथम इस तरह उरसा वक्षस्थल से अवायवाओ दो अंग उरोज अपूर्व अपूर्व अस्मद विधास्या मुझ जैसे व्यक्ति को मान उनायनो चित को क्षुब्ध करने वाला विभारती बना हुआ है बहु अनेक अद्भुतम अद्भुत सारस मृदुवाचन रास मुस्कान जैसे हाव भाव शुद्ध आदि अमृत के तुल्य वक्त्रे मुख में अनुवाद और तात्पर्य शिल ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की अनुवाद. मित्रवार, क्या तुम मुझे अपना निवास स्थान दिखा सकते हो? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस स्थान के वासियों को तुम्हारे उन्नत उरोजों के समान अद्भुत शारीरिक अंग किस तरह प्राप्त हुआ है. जो मुझ जैसे देखने वाले के मन तथा नेत्र को उद्वेलित कर रहा है। उनकी मधुर वाणी तथा मृदु मुस्कान से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उनके मुख में अमृत बसता होगा। तत्पर्य प्रमथ अग्निद्र ने उस स्थान को भी जाना चाहा जहाँ से वो ब्राह्मण बालक आया था और जहाँ के मनुष्य के वक्षस्थल इस प्रकार उठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि संभवतः ऐसा आकर्षक अंग उनकी कठिन तपस्या के फलस्वरूप हो। अग्निद्रा ने इस बालिका को सुरितमा कहकर संबोधित किया, जिससे वो उसे वहाँ ले जाने से कहीं अस्वीकार न कर दे। अग्निद्रा न केवल उस बालिका के उन्नत उरोजों से मोहित थे, वरन उसकी मधुर वाणी से भी आकृष्ट थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके मुख से अमृत निकल रहा हो, इसलिए वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयं ददति सावदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च प्रीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवचरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में सुग्रीव गोस्वामी परीक्षित को महाराज अग्निद्रा के बारे में उनके चरित्र के बारे में चर्चा कर रहा है। महाराज अग्निद्रा प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, और जो सामने तो सुन लिया है और पढ़ लिया है कि प्रियव्रत महान पुरुष थे, महान भक्त थे भक्त के भगवान के। तो वैसे ही तो उनके पुत्र भी महान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी तो क्योंकि यह है कि इस भौतिक जगह में रहते हुए भगवान के बाह्यरंग शक्ति माया देवी बहुत शक्तिशाली है और ये बाह्यरंग शक्ति पार करना, हमेशा आध्यात्मिक अवस्था पर स्थित रहना आसान नहीं है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। सड़क के रूप में हमको साधन भजन करना है, गुरु के आदेश अनुसार ऐसे करते हुए भजन करते हुए हमको देखना है कि हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकते हैं और रह सकता है। तो अग्निद्र महाराज राजा थे, शक्तिशाली थे, प्रिय व्रत महाराज के पुत्र थे और तपस्या करने के लिए रम्य स्थान पे मंदारा पर्वत पे पहुंच गए, क्योंकि उनको भी मालूम था कि जैसे अगर महल में रहता है या शहर में रहता है वो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे तो कर्तव्य जब है तो उसी समय भगवत का चिंतन करना मुश्किल है। वास्तव में संभव तो ऐसा लगता कि संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से और कलयुग में भी रहते हुए शहर में भी रहते हुए जब गुरु के आदेश अनुसार सब कुछ कर रहा है, विशेष करके नाम कीर्तन जप करता है, कीर्तन करता है, तो कहाँ पर भी हो आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है, रह भी सकता है, लेकिन हमेशा आध्यात्मिक अवस्था पर रहना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सोचा सब कुछ छोड़ के मंदर पर्वत की ओर मैं जाऊंगा और वहां पर कोई जड़ लोग ना है और वहां पर तो तपस्या करूंगा, भगवान का चिंतन करूंगा, ऐसे कर तो आगे जा सकते अपना मार्ग में। लेकिन जैसे यहाँ पर लेख है प्रभुपाद भी तत्पर्य में उल्लेख किया है पहले कि उनके उनके थोड़ा सा ये शुद्ध भाव नहीं था, भाव तो सही था एक दृष्टि से लेकिन एकदम शुद्ध नहीं था, भौतिक इच्छाएं भी थी और पृथ्वी लोक जाने के लिए भी थोड़ा सा विचार किया था वहाँ पर जाना अच्छा रहेगा। और इसमें भी उल्लेख है यहाँ पर कि इसलिए कोई बोल पूछ सकता है, लेकिन उनके पिताजी प्रियव्रत महाराज उच्च अवस्था के थे, तो ऐसे जब इस परिवार में जन्म लेता है तो वास्तव में ये भी जब अलग अलग संस्कार जो होता है दसवीं संस्कार जो जब ये पालन करता है तो संतान ये भी उच्च अवस्था पर पहुंच सकता है। सबसे पहले पूर्व संस्कार भी होने चाहिए और इसके बाद जब विधिवत पूर्व गुरु के अनुसार शास्त्र के अनुसार जब माता पिताजी सब कुछ पालन करता है जैसे अलग अलग संस्कार तब बहुत जल्दी उच्च अवस्था पर पहुंच सकता है, बच्चे भी बालक भी हो और इसके बाद बड़े होके तो स्थिर हो जाता है आध्यात्मिक अवस्था पे। लेकिन इसमें उल्लेख है कि क्योंकि गर्भदान के समय प्रियव्रत वैष्णव थे लेकिन फिर भी उसी समय थोड़ा सा ज़्यादा उनकी इच्छा थी तो स्त्री के साथ तो स्त्रीगमन किया और लेकिन उसी समय पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण नहीं किया। इसका फलस्वरूप यह हुआ क्योंकि जो लड़के जो अग्निद्रा तो इसके प्रभाव से तो ये एकदम शुद्ध संस्कार नहीं मिला, इसका फलस्वरूप बार में पैदा होने के बाद तो अलग अलग संस्कार भी जरूर किए होंगे लेकिन फिर भी जब उसी समय तो शुद्ध भावनाएं था तो इसलिए उनके पास भी शुद्ध भावनाएं था, थोड़ा सा कलुषित था उनका भाव। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि उत्तम अवस्था पर पहुंचना और वहाँ पर रहना आसान नहीं है, तो सबसे पहले पूर्व संस्कार होना चाहिए पिछले जन्म के, इसके बाद जहाँ पर भी जब फिर से जन्म लेता है तो अगर वैष्णव के परिवार में है, सुर वैष्णव के परिवार में, तो आगे जाने की संभावना तो है, आगे जा सकते, लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव के परिवार जन्म ना लेता है तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें उल्लेख है क्योंकि यहाँ पर जो भाव था एकदम शुद्ध नहीं था, पृथ्वी लोग जाने के लिए विचार किया था, लेकिन वास्तव में हमको कहाँ जाना है, गोलोक धाम जाना है, ये भौतिक जगत छोड़ना है। अगर गोलोक धाम नहीं जाना है तो चाहे ठीक है, अयोध्या धाम जाना है या वैकुंठ लोक जाना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जाना है। जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो ये अलग अलग कर्तव्य है वानाश्रम के अनुसार भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हमको, मतलब यह है कि हमको प्रयास करना है आगे जाने के लिए भक्ति मार्ग में, हमको भजन करना है जिससे हम आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंच सकता है। इसके बाद गौण कार्य जो है वन आश्रम धर्म के अनुसार चलना, सेवा करना, लेकिन वहां पर भी भगवान केंद्र में होना चाहिए। और इसके अलग दूसरे जो अलग अलग वर्ण आश्रम के अनुसार भी नियम है, विधि है, निषेध है, इसके अनुसार भी चलना है। लेकिन मुख्य अंग तो है नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, सर्वसांग और दाम वास, ये अच्छे तरह से करना चाहिए। इसके बाद हम अच्छे तरह से आगे जा सकता है। क्योंकि विचार तो अच्छा था कि मंदिर और पर्वत वहां पर जाने और तपस्या करना, लेकिन क्योंकि शुद्ध भावनाएं था, और वैसे ही अगर शुद्ध भाव भी हो लेकिन माया की प्रभाव इस भौतिक जगत में तो है, माया देवी शक्तिशाली है, देवी ऐसी गुणमाई मामाया दुरात्यया पार करना बहुत मुश्किल है, हमेशा आध्यात्मिक अवस्था पर रहना मुश्किल है शुरुआत में। जब आ गया है तो स्वाभाविक है, जब शुद्ध चित्त है, शुद्ध भाव है, तब गिरने की संभावना नहीं है। मध्यम भक्त उत्तम भक्त किए तो अच्छे तरह से सारे भजन कर सकता है, और गिरना उनके लिए तो ये भी संभावना है, लेकिन आसानी से नहीं गिर जाता है आध्यात्मिक अवस्था से। जब नाम रुचि है, भौतिक आसक्ति छोड़ दिया है, भगवान के प्रति आसक्ति है, तब स्थिर है, लेकिन जब तक उस अवस्था पे नहीं है, निष्ठा रुचि आसक्ति, तब तो सब आरानी से सब कुछ करना है। तो यहाँ पर तो अग्निद्र महाराज तो तपस्या करने की प्रयास किया, योग अभ्यास किया, और जिससे शास्त्र में लेख है तो सुबह उठ के स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनते हुए तो योग अभ्यास करना है, अष्टांग योग। तो आठ अंग है योग अभ्यास के। तो सबसे पहले आसन, तो अच्छे तरह से बैठना है, और आसन भी कर सकता है स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद प्राणायाम भी करना है, और इसके बाद प्रत्याहार, तो ये इंद्रियां वश में रखना है, और इसके बाद धारणा इत्यादि भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसे करते हुए तो योगाभ्यास करना है। तो उन्होंने तो प्रयास किया, और ये भी उल्लेख किया है कि जब योगाभ्यास करता है तो ये आँख खुलना ठीक नहीं है, जब क्योंकि जब आँख खुला है तो अगर कोई पक्षी भी सामने आ जाता है तो आँख को इस तरह उस तरह जाता है, इसलिए। लेकिन आंख बंद करना भी उचित नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब दोनों आंख बंद है, पूर्ण रूप से बंद है, क्या होता है नींद आ जाता है, सो जाता है, इसलिए आधा खुलना चाहिए आंख। ऐसा करते हुए तो ज्यादा नहीं देख सकता है और नींद नहीं आ जाता है। और लेकिन जो भी है, जो जैसे भक्त लोग है भजन करता है, जप करता है और भगवत श्रवण करता है, तो उसी समय भी जो जैसे योग अभ्यास में है और प्रभुपद भी बोलते थे जपा जप के समय अच्छे तरह से बैठना है, सिट प्रॉपरली अच्छे तरह से बैठना है, अन्यथा योग अभ्यास का न जप का न भी संभव नहीं है। और तो आंख खुल आंख खुलना तो इससे जब आ गया है तो जो भी है तो आंख खुला है बंद है आधा खुला है तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन शुरुआत थोड़ा सा देखना है जिससे हम अच्छे तरह से सुन सकता है जो महामंत्र जो हम बोलता है अच्छे तरह से सुन सकता है और कि मन और इंद्रिय इधर उधर नहीं चले जाता है। तो हमको अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास योग है। तो भक्ति योग में भी भक्त के लिए भी जरूरत है। तो एकांत स्थान में तो जप करना अच्छा है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अकेले हैं उसी समय भी संभावना है कि हम सो जाता है, इसलिए भक्त के संग भी रहना अच्छा है जो अच्छा तरह से जप करता है। एक तो एक कमरे में जैसे प्रॉपर के घर में मंदिर में जहाँ पर वातावरण शुद्ध है क्योंकि सब भक्त लोग वहाँ पर है और भजन कर रहे हैं तो वहाँ पर भजन करना अच्छा रहता है। ऐसा करते हुए कि अच्छे संग में तो आसान हो जाता है जप करना भजन करना। तो लेकिन योगाभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा अकेले करता है, लेकिन फिर भी योगी जो भी है एकांत स्थान में योगाभ्यास करता है लेकिन फिर भी दूसरे समय भी दूसरे के साथ रहता है जो योगी है और भगवान की चर्चा कर रहा है शास्त्र की चर्चा कर रहा है। और शुद्ध आहार तो मतलब अल्प भोजन भी लेता है, ज़्यादा खाने से तो योगाभ्यास करना संभव नहीं है, कम से कम ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, और सोना भी ज़्यादा सोना भी उचित नहीं ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ तो देखना है। और लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रयास करे अच्छे तरह से भगवान की बाह्यरंग शक्ति माया देवी शक्तिशाली है और इसलिए यहाँ पर ये भी मोहित हो गया अग्निद्रा अकेले थे वहाँ पर मंदर पर्वत में बहुत सुंदर जगह वहाँ पर शुद्ध वातावरण वहाँ पर तो था और अभ्यास किया लेकिन तो जनक वहाँ पर एक अप्सरा उपस्थित हुई वहाँ पर और इससे भी मोहित हो गया। आँख आधा खोला था तो कुछ देखा था और सुन लिया उनके ये जो आवाज़ घुंघरू के नुपुर के इससे भी चलित हो गया। इसके बाद आँख खोला और उनके सुंदर रूप देखा तो एकदम मोहित हो गया। लेकिन क्योंकि इसमें उल्लेख है क्योंकि अभ्यास तो किया योग अभ्यास किया है और जब योग अभ्यास करता है तो और शास्त्र का अध्ययन करता है तो मालूम होता है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है और शरीर दारी है तो जीवात्मा और सबके तो उनकी समभाव है, देखता है कि सब भगवान के अंश है या परम तत्व के अंश है। मायावादी भी हो उनको भी मालूम है हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है और भगवान ये परम ब्रह्म परम सत्य में लीन हो जाना ये भी योग अभ्यास करता है। और कोई है जो भक्त है योगी जो है जो भगवान का चिंतन कर रहा है या परमात्मा का चिंतन कर रहा है तो योग अभ्यास करता है। लेकिन तो लेकिन माया के प्रभाव से तो ये ना की संभावना है। तो यहाँ पर आंखों खोला और देखा वहाँ पर सोचा ऐसा क्योंकि ये योगाभ्यास किया समभाव है हम आत्मा है शरीर ना है, लेकिन फिर भी देखा तो शरीर अविचलित हो गया और सोचे ये। और इसलिए यहाँ पर भी बोलता है सुरितमा ए मित्रवार अब मेरे मित्र है, बालक है, ब्राह्मण, दूसरे श्लोक में तो बोला था अब ब्राह्मण है, एक बालक है, तो विमोहित थे और कहाँ से आया है। तो ये इसलिए हम तो सावधानी से भजन करना है, शुद्ध वैष्णव के संग में रहना है, सतर्क रहना चाहिए। और हमने भी देखा है तो भक्त के संग में भी रहते हुए, भगवान की सेवा में, भगवान के संग में भी रहते हुए कभी कोई जीव साधक भी विमोहित हो जाता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर चले गया, तक आता तो विश्वरूप बड़े भाई की खोज में मैं जा रहा हूँ, लेकिन वस्त्र में प्रचार करने के लिए, कृष्ण नाम वितरण करने के लिए गए, पतित पावन हेतु ताव अवतार, कलियुग के जो ज्यादा से ज्यादा लोग शूद्र संभवा, कालक शूद्र संभवा, शूद्र के समान है, उनके उद्धार के लिए पूरा भारत वर्ष में भ्रमण किया है, पतित जो जीवात्मा के उद्धार करने के हेतु नाम कृष्ण नाम वितरण के लिए चले गया। और जब दक्षिण भारत थे उनके साथ एक ब्राह्मण थे, कृष्णदास ब्राह्मण थे, महाप्रभु के संग में थे, भजन करते थे, लेकिन ये भी मोहित हो गया। तो कोई वहाँ पर बता दिए थे जो उनके पास भी स्त्री ये तो रखते थे और दूसरे को भी मोहित करने के लिए, तो ये भी मोहित हो गया, विमोहित हो गया। उनके सेवक महाप्रभु के संग में थे और कभी कभी गुरु के संग में है, लेकिन फिर भी विमोहित हो जाता है शिष्य और चले जाता है, स्त्री के साथ चले जाता है, और कभी कभी पुजारी भी है और फिर भी विमोहित हो जाता है, ठाकुर जी की सेवा करता है फिर भी विमोहित हो जाता है, सेवा छोड़ता है। इसलिए सावधानी से रहना चाहिए, भक्त के संग में रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, विशेष करके जो आगे है उनके संग में रहना चाहिए। क्योंकि ये देख सकता है जब और विनम्र भाव में रहते हुए तो भजन करना है, इसे करते हुए तो आगे जा सकता है। और प्रभु भी कहते थे कि अगर कोई सोलमाला जाप करता है, भक्त के संग में है, तो गिरने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अच्छा तरह से जाप करना है, तब भगवान हमारा रक्षा करेंगे जरूर। इसलिए यह और ये भी है कि वस्त्र में सोलमाला कम से कम है, कम से कम सोलमाला जाप सुबह करना है, और दिन में अगर कुछ थोड़ा सा समय है और बीच में अगर कोई सेवा नहीं है तो शास्त्र का ध्यान तो करना भी है, दूसरे के साथ थोड़ा सा चर्चा भी कर सकता है, क्या बोला प्रवक्ता क्लास में, या शास्त्र के बारे में चर्चा कर सकता है, सेवा के बारे में। और लेकिन फिर भी अगर कुछ समय बाकी है, अकेले है, तो और जब भी कर सकते हैं, सोलमाला कम से कम है। सदम कीर्तन तमाम हमेशा कीर्तन करना चाहिए, विनम्र भाव में रहते हुए, त्रिनाद अपि सुनिच्छे न तरोर अपि सहिष्णु न अमानिना अमानिना कीर्तनिया सदाहरी। तो कीर्तनिया सदाहरी, हमेशा कृष्ण नाम का चरण करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि माया देवी तो बाह्यरंग शक्ति बहुत शक्तिशाली है, अगर कोई प्रवचन सुनता है कृष्ण के बारे में, महाप्रभु के बारे में, तो जन समय तो अच्छा लगता है और स्थिर है, उसी समय आनंद का अनुभव कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्लास के बाद तो बाहर जाता है तो फिर से पुरुष स्त्री देखता है और स्त्री पुरुष भी देख सकती है, इसके बाद फिर से मोहित हो सकता है। तो इसलिए निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए तुरंत, तो प्रवचन के बाद या प्रसाद पाने के बाद अगर कोई सेवन आई है तो तुरंत फिर से जप करना है। हाँ यह है। तो कलयुग में तो वास्तव में एक उपाय है उत्तम अवस्था पर पहुंचने के लिए है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कोला नस्त्यव 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 गत्यरन्यता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ और ये उनकी विशेष कृपा है भगवान, मतलब कृपा है और महाप्रभु के कि इस कलयुग में कृष्ण नाम के माध्यम से भक्त की सहायता करता है, आशीर्वाद देता है। नाम चिंतामणि रूप चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सूर्य निर्भुक्ता अभिनत्व नाम नामिना, कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। तो पति पावना नाम निस्तराय नराध महा राध कृष्ण स्वरूपाय चैतन्याय नमो नमः। गुरु और गौरांगा की शरण में रहते हुए कृष्ण नाम का जाप या कीर्तन करना चाहिए। पतित पावन नाम, जो पतित है राम पतित है कलयुग में, हमको उद्धार करेंगे कृष्ण नाम। निस्तराय नराधम, जो नराधम है तो उसका उद्धार करता है। राधा कृष्ण स्वरूप आया, यह महामंत्र राधा कृष्ण के स्वरूप है, हरे श्रीमती रानी कृष्णा सबसे आकर्षक है। तो और ये भी है तो चैतन्याय नमो नमः, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है। तो नाम के समय, नाम उच्चारण के समय, जप के समय भी महाप्रभु का स्मरण कर सकता है। और वास्तव में जैसे ठाकुर जी की सेवा होता है, पहले गुरु पूजा, इसके बाद गौरांगा पूजा, इसके बाद कृष्ण पूजा। तो गुरु की कृपा के बिना, महाप्रभु की कृपा के बिना कलयुग में वास्तव में अच्छा तरह से कृष्ण पूजा करना संभव नहीं है। और वैसे ही नाम कीर्तन में भी, जप में भी सबसे पहले गुरु का स्मरण करना चाहिए और इसके बाद महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए, उनकी लीला का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जप करते हुए राधा कृष्ण का स्मरण कर सकते, उनकी लीला का स्मरण कर सकता है। यह है कृष्ण कृष्ण नाम बिना है। नाम यज्ञ महायज्ञ कौल कलमशनाशनम, और इसके बाद क्या है, श्री चैतन्य प्रीत्यर्थम नाम यज्ञ समर्पणम। तो महायज्ञ है नाम कीर्तन, और कलमाश जो दिल में है, अनर्थ जो है ये दूर हो जाता है नाम कीर्तन के प्रभाव से। श्री कृष्ण चैतन्य प्रीत्यर्थम, श्री चैतन्य महाप्रभु के तो प्रीतिपूर्वक जिसे वे संतुष्ट हो जप करना, उनको अर्पण करना चाहिए यह महामंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य प्रीत्यर्थम नाम यज्ञ समर्पणम, समर्पण करना चाहिए, प्रीतिपूर्वक जप करना चाहिए। तो ऐसे करते हुए जब अच्छे तरह से जप करते सुबह, तो दिन में भी भगवान का स्मरण कर सकता है। लेकिन दिन में अगर कुछ समय है बाकी है थोड़ा सा, जैसे प्रसाद से पहले अगर 10-15 मिनट में है तो 2-3 माला और जप कीजिए, और इसके बाद शाम को अगर कुछ समय हो सोने से पहले 2-3 माला और जप करो। मतलब ये 16 माला कम से कम है, 16 माला सुबह करना है, इसके बाद दिन में अगर कुछ। लेकिन आजकल क्या होता है, सबके पास मोबाइल है और जप माला भूल जाता है, फेसबुक में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप में क्या हो रहा है देखता है। ठीक है, व्हाट्सएप तो जो भी है तो भगवान की सेवा में भी लगा सकता है मोबाइल फोन, और इसमें से भी कुछ सीख सकता है जब अच्छे तरह से उपयोग करते मोबाइल के। लेकिन सवारानी से रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल वहाँ पर भी तो माया देवी इसमें है, तो गिना की संभावना है, गलत चीज़ भी देख सकता है मोबाइल में। इसलिए ठीक है मोबाइल है इसमें भी कुछ तो सेवा में लगाता है, जरूरी भी है आजकल और है ना इसमें भी कुछ मतलब अगर कोई प्रश्न है आजकल मोबाइल में भी तो प्रश्न पूछता है, इसका अर्थ क्या है, जैसे भक्ति के बारे में भक्ति का क्या अर्थ है, तो मोबाइल में देख सकता है जवाब मिलेंगे, कुछ सीख तक से। लेकिन फिर भी अंत के समय तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, मन इंद्रियों तो एकत्रित होना चाहिए, तो उसी समय तो मोबाइल का काम नहीं होगा। और वैसे ही तो सबसे महत्वपूर्ण है जप, जप माला हमेशा हमारे पास होना चाहिए और अच्छा तरह से जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा तरह से जप करना हमको। इसके बाद तो अच्छे तरह से जप करने के लिए हमको भगवत श्रवण करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए और साधु संग में रहना चाहिए। ऐसा कर तो अच्छे तरह से जप कर सकता है, तब गिरने की संभावना नहीं है। अगर कोई लेकिन अगर अच्छे तरह से जप नहीं करता है तो गिरने की संभावना है, इसलिए अच्छे तरह से जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण नाम प्रभु की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।